नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार एक दिन कम किया। राज्य के प्रधान गृह सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी को कार्यमुक्त किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का आरोप, कोलकाता की कल की हिंसा भाजपा द्वारा पूर्व नियोजित। मौसम विभाग ने केरल में मॉनसून 6 जून को आने की संभावना जताई। कैलाश मानसरोवर यात्रा अगले महीने की 8 तारीख से शुरू होगी। और क्रोएशिया के इगोर स्टीमाच भारतीय फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। निर्वाचन आयोग ने असाधारण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की बाकी बची 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले बंद करने का फैसला किया है। ये निर्णय कल कोलकाता में हुई हिंसा को देखते हुए लिया गया है। नई दिल्ली में आज निर्वाचन उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि कल रात 10 बजे के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
Commission hereby direct that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election in 9 parliamentary constituencies from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019.
आयोग ने प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की वजह से राज्य के प्रधान गृह सचिव अतिया भट्टाचार्य और अपर महानिदेशक सीआईडी राजीव कुमार को पद से हटा दिया है। उन्हें कल सुबह 10 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करने को कहा है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक सभा में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता ने भाजपा से बदला लेने की बात कही थी और 24 घंटे के अंदर कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसक घटनाएं हुई।
दीदी, अपने अहंकार में आप क्या क्या कर रही है? यहाँ भाजपा नेताओं को रैली नहीं करने दी जा रही, वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उम्मीदवारों पर हमले किए जा रहे, यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर पौत्र को भी आपके गुंडों ने नहीं छोड़ा। दीदी, आप बंगाल को किस युग में ले जाने पर तुली हुई है?
इस बीच ममता बनर्जी ने समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा की आलोचना की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कल की घटना भाजपा द्वारा पूर्व नियोजित थी।
शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और समाज के सभी वर्गों के लोगों ने शैक्षणिक संस्थान में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की निंदा की है। विपक्षी वाम मोर्चे ने इस घटना के विरोध में कोलकाता में एक रैली निकाली। विद्यासागर कॉलेज के शिक्षक भी इस घटना की निंदा करते हुए धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की पूर्व नियोजित योजना बताया। दूसरी ओर भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित शरारती तत्वों ने रोड शो के दौरान हमला किया। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने बड़े उद्योगपतियों के अरबों रुपयों के कर्ज तो माफ कर दिए, लेकिन किसानों के कर्ज नहीं माफ किए। पंजाब के फरीदकोट में आज एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों के ऋण माफ कर दिए गए हैं।
72,000 रुपए साल का जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम की है उसको मिलेगा। जो भी गरीब लोग हैं आपके बैंक अकाउंट में जाए, वैसे ही जाएगा। आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे वैसे ही आपकी दुकानें चालू हो जाएंगी, डिमांड पैदा होगा। जैसे ही डिमांड पैदा होगा लुधियाना की सब छोटी मिडिल साइज फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, युवाओं को रोजगार।
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के मऊ में रैली की। एक रिपोर्ट।
कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वाराणसी में रोड शो किया, जहां से वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा, बसपा और रालोद गठबंधन की देवरिया और मऊ की रैलियों में बसपा प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां रहीं। वरिष्ठ भाजपा नेताओं सुषमा स्वराज, कलराज मिश्रा, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, निरहुआ ने आज विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। भाजपा की प्रदेश इकाई ने कोलकाता में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रैली पर हुए हमले के विरोध में आज लखनऊ में मौन जुलूस निकाला। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली में कहा कि पार्टी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आतंकवाद से कड़ाई से निपट सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी धार जिले में जनसभा को संबोधित किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय के अंतर्गत आम चुनाव के सातवें चरण का समग्र विश्लेषण पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी से FM गोल्ड चैनल, इंद्रप्रस्थ और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से जनहित में जारी।
एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत न मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका।
सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना,
उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
तो अब सोच लो,
आधार अपना लो, फायदे में रहोगे।
ये आकाशवाणी है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अपने निर्धारित समय से 5 दिन बाद 6 जून को केरल पहुंचेगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून इसके बाद उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि 18 और 19 मई के दौरान अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से, निकोबार द्वीप और इससे लगी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। ओडिशा सरकार ने चक्रवात प्रभावित जिलों के बारे में आज एक प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्रीय दल को सौंपी। गृह मंत्रालय में अपर सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने राज्य के विभिन्न प्रभावित जिलों का दौरा पूरा कर लिया। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि फोनी तूफान से करीब 1,19,42,00,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्रीय दल के प्रमुख विवेक भारद्वाज ने बताया कि केंद्र राज्य सरकार को हर संभव मदद करेगी। उन्होंने राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। ICICI बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर आज नई दिल्ली में लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में पेश हुए। दोनों से ICICI बैंक वीडियोकॉन ऋण मामले में पूछताछ की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
जवानों का आया कांग्रेस को वोट दे।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल 8 जून से 8 सितंबर तक होगी। इस वर्ष लगभग 3,000 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इनमें 740 महिलाएं हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने आज कंप्यूटर के जरिए यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के नाम तय किए। चुने गए यात्रियों को SMS और ईमेल के जरिए जानकारी दी जा रही है। आवेदन करने वाले लोग वेबसाइट kmy.gov.in पर पंजीकरण की स्थिति जान सकते हैं। भारत का कुल निर्यात अप्रैल माह में पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 1.34% की वृद्धि के साथ करीब 44 अरब अमरीकी डॉलर का रहा। अनुमान है कि पिछले महीने कुल आयात करीब 53 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 4.5% है। और आर्थिक जगत की अन्य खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 204 अंक कम होकर 37,115 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 65 अंक गिरकर 11,157 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 10 पैसे की मजबूती आई। लगातार दूसरे सत्र में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती में रहा।
गुवाहाटी के जू रोड क्षेत्र में अब से थोड़ी देर पहले हुए धमाके में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के अनुसार धमाका एक वाहन में हुआ था। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की कड़ी निंदा की है। प्रतिबंधित संगठन उल्फा के एक धड़े ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया में आई उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की एक 22 वर्षीय महिला पर उसके भाइयों ने तेजाब से हमला किया और बाद में उसे ग्रेटर नोएडा के कोट गांव में फेंक दिया। आयोग ने इस बारे में राज्य के पुलिस महानिदेशक OP सिंह से कहा है कि वे इस मामले में की गई कार्रवाई की तुरंत जानकारी दें। उत्तराखंड में गंगा के किनारे 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। इस बारे में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, HCL फाउंडेशन और इंटैक के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा के किनारे बसे 97 शहरों और करीब 4,400 गांवों में स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने आज कान फिल्म समारोह में भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के स्वर्ण जयंती संस्करण के तौर पर एक विशेष पोस्टर जारी किया गया। इस अवसर पर अमित खरे ने भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के उभरते स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा कि देश में क्षेत्रीय सिनेमा का महत्व बढ़ रहा है। उन्होंने भारत में फिल्मों की शूटिंग को आसान बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा देने और विदेशियों को फिल्म निर्माण के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन पर भी चर्चा की। क्रोएशिया के इगोर स्टीमाच को 2 साल के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। उन्हें कोचिंग का 18 साल का अनुभव है। भारतीय टीम उनके मार्गदर्शन में थाईलैंड में 5 जून से किंग्स कप में हिस्सा लेगी। जनवरी में AFC एशियाई फुटबॉल कप के बाद से मुख्य कोच का पद खाली था। 51 वर्ष के स्टीमाच क्रोएशिया की 1998 विश्व कप टीम के सदस्य थे जो तीसरे स्थान पर रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार एक दिन कम किया। राज्य के प्रधान गृह सचिव कार्यमुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक CID को हटाकर गृह मंत्रालय भेजा गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का आरोप, कोलकाता की कल की हिंसा भाजपा द्वारा पूर्व नियोजित। मौसम विभाग ने केरल में मॉनसून 6 जून को आने की संभावना जताई। कैलाश मानसरोवर यात्रा अगले महीने की 8 तारीख से शुरू होगी। और क्रोएशिया के इगोर स्टीमाच भारतीय फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।